الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 5 سے. یہ جو آیات تلاوت کی گئیں ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے معرف و مسائل پر تھے. پیج نمبر 464 سے شروع کرنا ہے اور بات چل رہی ہے والدین کی اطاعت و خدمت کے فضائل روایات حدیث میں. تو آخری روایت ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں جو ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضگی دوزخ میں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. چوتھی روایت یعنی چوتھی حدیث کے بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا. اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، ہوا ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ظلم کیا چاہے جیسے بھی ظلم کیا ہو. جسمانی ظلم ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت مار پیٹ کری ہو یا ان کی جو ہے وہ جسمانی نشو نما کا خیال نہ رکھا ہو، غفلت برتی ہو، اولاد کو جو ہے وہ بیمار چھوڑ دیا ہو، تکلیف میں چھوڑ دیا ہو، یہ جسمانی ظلم کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور نفسیاتی ظلم کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی ظلم یہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر کہ اولاد کو ایک ایسا ماحول دیا ایک ایسا ماحول دیا جس ماحول کے اندر اولاد جو ہے وہ نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو گئی، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئی، نفسیاتی عوارض کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے کہ عام طور پر گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے والا ماحول ہو، ٹھیک ہے، چیخ چلا اور مار پیٹ اور اٹھا پٹخ، ٹھیک ہے، اس قسم کا ماحول ہو، یا گھر کے باہر اس قسم کا ماحول ہو، جیسے کہ جن جگہوں میں جنگیں ہو رہی ہیں یا کافروں کی یا ظالموں کی، چاہے وہ کافر نہ ہو مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن ظالم ہیں اور وہ انہوں نے ظلم و دہشت گردی کا جو ہے وہ یعنی طوفان گرم کیا ہوا ہے، تو ایسے ماحول کے اندر اولاد پرورش پاتی ہے تو اس کے اوپر نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں، اس کے بہت منفی نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اب باہر جو معاملہ ہو رہا ہے تو والدین براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، جیسے غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے تو بھائی وہ فلسطینی والدین اس کے ذمہ دار تو نہیں ہے کہ इसराइली जो है वो बमबारी कर रहे हैं। बमबारी से जो है वो छोटे बच्चों की नफसियात के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है, ठीक है ना। लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, पिटते हुए और जलते हुए और दबते हुए देख रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर तो भाई एक छोटी सी कोई मसला हो जाए तो उसका असर पड़ता है। तो इतने बड़े बड़े जो है वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते ना, कैसी अजियत से जो है वो बच्चे गुजर रहे हैं, और उनसे पहले कितने सारे बच्चे जो कि इस किस्म के माहौल के अंदर रहे हैं, तो वो कैसी कैसी अजियतों से गुजरे होंगे। लेकिन घर के अंदर जो इस किस्म का माहौल है, जंग, राइट, जंग का जो माहौल होता है, तो उसमें तो फिर माँ बाप का किसी ना किसी दर्जे में दोनों का बराबर बराबर हाथ होता है, या किसी एक का ज्यादा हाथ होता है, किसी एक का कम हाथ होता है ना। एक तरफ से जो है वो खिंचाव पड़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ से भी जो है वो खिंचाव पड़ रहा होता है ना। ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ये जो है ना फिर वालिदैन का जुल्म होगा। भाई छोड़ देते तुम, ढील छोड़ देते, अगर एक तरफ से जुल्म हो रहा था तो आप अपनी तरफ से ढीला छोड़ देते, तो फिर वो झगड़े वाला माहौल नहीं होता, ठीक है। और इससे जो है वो फिर बच्चे जो है वो झगड़े वाले माहौल से बच जाते, ठीक है। कवर अप कर सकते हैं बहुत सूरतों में, माँ बाप में से कोई एक जो है ना वो अगर अपना हक छोड़ दे या नरमी अख्तियार कर ले, तो उससे जो है ना वो, यानी ये कुर्बानी होती है माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, ये कुर्बानी होती है ताकि उनके बच्चे जो है वो इस बुरे माहौल के असरात से जो है वो बच जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर नफसियाती जुल्म के जो है वो माँ बाप खुद मुर्तकिब हो रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे बढ़ करके, जिस्मानी से बढ़ करके नफसियाती होता है, नफसियाती से बढ़ करके जो है वो रूहानी जुल्म होता है। रूहानी जुल्म ये होता है कि औलाद को जो है वो जहन्नम के रास्ते के ऊपर डाल दिया, जन्नत का रास्ता नहीं देखने दिया, या जन्नत का रास्ता दूर दूर से दिखाया, चलने नहीं दिया उसके ऊपर, जन्नत के रास्ते पे चलने नहीं दिया। जैसे कि आम मुसलमान जो है वो जन्नत के बारे में कुछ कुछ बता तो देता है, लेकिन जहां पे चलने की बात आती है तो वहां पे चलने ही नहीं देता अपनी औलाद को जन्नत के रास्ते के ऊपर, बल्कि चलाता जहन्नुम के रास्ते पर ही है, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा जुल्म है और ये रूहानी जुल्म कहलाता है, ठीक है। तो अगर माँ बाप ने ऐसा कोई रूहानी जुल्म औलाद पे किया हो, नफसियाती जुल्म औलाद पे किया हो, या जिस्मानी जुल्म औलाद पे किया हो, अल्लाह ताला ने औलाद को इसकी इजाजत नहीं दी कि वो इंतकाम ले, इसका इंतकाम ले, ठीक है। और इंतकाम का मतलब जो है ना वो ये नहीं है कि यानी औलाद उनसे मोहब्बत करे, हर हाल में मोहब्बत करे, नहीं। मोहब्बत ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। अगर माँ बाप ने जो है वो औलाद के ऊपर जुल्म किया होता है ना, तो अब औलाद जो है ना वो माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकती। मोहब्बत जो है वो औलाद के दिल से माँ बाप की या तो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो मोहब्बत पर तो इख्तियार नहीं है इंसान का, मोहब्बत पर इंसान का इख्तियार नहीं है। मोहब्बत तो यानी हालात और वाकयात के हिसाब से और रवैयों के हिसाब से होती है, कि बल्कि नतीजे उनके रद्द अमल के तौर पर मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है, ठीक है। तो फिर इंतकाम लेने का मतलब क्या, इंतकाम लेने का मतलब यह है कि उनकी खिदमत ना करें और उनके साथ जो है वो जिस्मानी तौर पर या नफसियाती तौर पर जो है ना वो उनसे बदले निकाले। रूहानी तौर पर बदला नहीं निकाल सकता कि माँ बाप को जो है वो जहन्नुम के रास्ते पर डाल दे, नहीं। औलाद माँ बाप को जहन्नुम के रास्ते पर नहीं डाल सकती, ठीक है। औलाद माँ बाप को जहन्नुम के रास्ते पर नहीं डाल सकती, क्योंकि माँ बाप जो है ना ये बड़े हो चुके हैं, अब उनको बच्चे जहन्नुम के रास्ते पर नहीं डाल सकते, वो खुद मेच्योर हो चुके हैं, वो अपने किए धरे का खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो फिर औलाद जो है वो नफसियाती जुल्म तो कर ही नहीं सकती अपने वालदैन के ऊपर, लेकिन औलाद, सॉरी, औलाद रूहानी जुल्म तो कर ही नहीं सकती अपने माँ बाप के ऊपर कि उनको जहन्नुम के रास्ते पर डालते, तो फिर कौन सा जुल्म कर सकती है, या किस किस शक्ल में इंतकाम ले सकती है उनके जुल्म का? नफसियाती, नफसियाती तौर पर उनको ऐसी अजियत पहुंचाए कि पुराने बदले निकालना इसका मकसद हो, या जिस्मानी तौर पर उनको कोई अजियत पहुंचाए या उनके साथ जो है वो मामला करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उससे मना कर दिया, इन ज़लमा, अगरचे के उन दोनों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया हो फिर भी तुम बदला नहीं ले सकते, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो, बहुत सारी बातें अभी हो गई हैं, तो अगर कोई फॉलो नहीं कर पाया उनको, कोई कोई सवाल हो उसके ऊपर मजीद, तो पूछ लीजिए, ठीक है। تو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی ان کی ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو۔ لڑکے سے مراد لڑکی بھی اس کے اندر شامل ہے، نہیں کسی لڑکی پر ظلم کیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکے پر ظلم کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں ہے، نہ جسمانی طور پر نہ نفسیاتی طور پر، کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ لفظ مٹاوا بھی ہے، بیہقی نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، 100 مرتبہ بھی، یعنی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ایک حج مقبول کا ثواب، اور ایک حج مقبول کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت جو ہے نا، جہاں پر یہ ثواب کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی، یہ جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ محبت سے نظریں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں، یہ مت پرواہ کیجیے گا کہ جی اللہ کے جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی، اللہ کا نعوذ باللہ مشکل پڑ جائے گی اللہ کے لیے، ہے نا؟ جیسے کہ ہم کسی کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اگر، تو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ بھئی اگر زیادہ ہم نے کھا لیا نا تو کہیں میزبان کے لیے مشکل نہ پڑ جائے، ان کا کھانا اگر کم پڑ گیا تو ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں ایسا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے، کم پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس فکر سے جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں کمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کسی نے کچھ لکھا ہے کہ میرے والد بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، میرے والد بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، ہر چیز میں مجھ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز لینا بھی کہو تو کہتے ہیں تم بولی اور ترنت لڑی۔ اچھا، ترنت شاید ہندی میں کہتے ہیں، بالکل امیڈیٹلی بولا شاید، فوراً جب ہوگا تب لائیں گے، اور پھر وقت کے ساتھ بھول جاتے ہیں، پر ہم کچھ نہیں کہتے اب۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے بات کو سمجھا اور آپ نے بات کو مانا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ سے راضی ہو اور آپ کو اس کے اوپر بے انتہا ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کہ والد صاحب جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ ان کی غلطی بے شک ہوگی، لیکن آپ ان سے جو ہے نا وہ اس کے بدلے میں کوئی انتقامی جذبہ یا انتقامی معاملہ یا ان کوئی ایسا کام بالکل بھی نہیں کر سکتی، اللہ کی خاطر، ہے نا؟ دیکھیں، جزا جو ہے وہ والد نے تو نہیں دینی ہوتی نا، والدہ نے بھی ثواب نہیں دینا ہوتا، والد نے بھی ثواب نہیں دینا ہوتا، ثواب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی نے دینا ہے، اور جنت اللہ ہی کے ملک میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی خاطر جو ہے وہ خصوصاً ایسے معاملات جن میں کہ دل مائل نہ ہو لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر وہ والا نیک کام کر رہا ہونا، تو اس کا تو ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ دل میں آپ کو چاہت بھی ہو رہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، پھر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ چاہت نہیں ہو رہی پھر بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، تو اس ثواب کے اندر تو صبر کا ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے، صبر کا ثواب۔ ٹھیک ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے اوپر تو بغیر حساب کے ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہی خاموش رہتے ہیں، پر بہت سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اب والد کے علاوہ کس سے کہیں؟ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے والد کے علاوہ کس سے کہیں؟ ظاہر ہے کوئی ضرورت کی چیز ہے تو اس کے لیے یا تو کوئی اور ذریعہ دیکھیں، کوئی محرم مرد ہو، کوئی چچا ہو، ماموں ہو، بھائی، کوئی چلے، اگر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں تو خاندان کی، گھر کی کسی بڑی خاتون کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی غیر محرم مرد کو بھی کہلوایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ خود نہ کہیں کیونکہ پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نوجوان ہیں تو خود تو غیر محرم سے انٹریکٹ نہ کریں، لیکن کسی سینئر خاتون کے ذریعے سے بھی کہلوایا جا سکتا ہے۔ ठीक है, या ये कि मजबूरन जो है ना, जब इंसान खुद अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, यानी किसी के जरिए से पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में जरूरत के लिए जो है वो औरत को इजाजत होती है कि वो बाहर जा करके अपना काम खुद से कर सके। ठीक है, यानी रोजमर्रा की जरूरियात की बात हो रही है, तो उसके लिए, वरना तो बाहर निकल करके अपने लिए कोई चीज खरीद लेना पर्दे में बुरके के साथ जो है वो औरत बाहर जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि इंतहाई मजबूरी में ही खाली बाहर जा सकती है, नहीं, जरूरत के लिए पर्दे में जो है वो रह करके बाहर जा सकती है औरत। ठीक है, आपका जो सवाल है ये तो रोजमर्रा की जरूरियात के बारे में, एवरी डे नीड्स, जो कि वाले साहब मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो आज कह रहा है कि आप या तो किसी मर्द के जरिए से, दूसरे किसी मर्द के जरिए से कहलवा करके काम करवा लें, या फिर जरूरतन आपको भी जाना पड़ेगा। पैसे तो वालिद को ही देने होंगे, अब पैसे भी नहीं है, तो पैसे भी नहीं है चीज खरीदने के लिए, तो फिर तो भाई अल्लाह ताला से मांगे। ठीक है, अल्लाह ताला के पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं है। देखिए, ये तंगियां होती हैं इंसान की जिंदगियों में। देखिए, किसी की जिंदगी में किसी शक्ल की तंगी है, आपकी जिंदगी में यह है कि जरूरत की चीजें वाले साहब ला के नहीं दे रहे, हत्ता के वो पैसे भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसे मौके पर जो है ना, वो हमें ये करना चाहिए कि हमें एक तो अल्लाह ताला से इस मुश्किल की आसानी के लिए दुआ करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी ये कि हम थोड़ा ये भी सोचें कि पैसे नहीं है, जरूरत की चीजें नहीं है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वालिद खुद तो है ना, जिंदा तो है ना, ठीक है ना, और घर तो है ना। ठीक है, घर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो तो मेरे लिए अवेलेबल है ना। कितने दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी खवातीन हैं कि जिनका कोई भी नहीं है, और हत्ता कि जिनका के घर भी नहीं है ना। ये तो रोजमर्रा आजकल जो ये सारा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जो कवरेज मिल रही है गजा के हालात को, तो हम कुछ उनके लिए कर नहीं सकते दुआ के अलावा, या ज्यादा से ज्यादा कुछ चैरिटी, वो भी चैरिटी वहां पहुंचने का कोई सिलसिला ही कोई नहीं है, तो दुआ कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है ना, वो हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हम उनके हालात को देख करके जो है ना, वो तहे दिल से अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाए, बंदियां बन जाए, कि उनके पास तो जो था वो भी नहीं है, और पहले भी जो था वो भी उनकी जरूरियात से कम ही था, तो हमारे पास तो बहरहाल उनसे उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा ही है, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। लेकिन जो अवेलेबल नेमतें होती हैं ना, ठीक है, बेशक थोड़ी नेमतें हैं आपके पास, लेकिन अवेलेबल तो है ना। ठीक है, तो अवेलेबल नेमतों के ऊपर जो शुक्र करता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उनके मकदार को बढ़ा देते हैं। व इन तउद्दु नियमतुल्लाहि, सॉरी, ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अगर शुक्र करोगे ना, तो हम अपनी नेमत को बढ़ा देंगे, जरूर जरूर बढ़ा देंगे। तो हमारे पास थोड़ी नेमत है, ठीक है, कि बस घर है, लेकिन जरूरियात के लिए पैसे नहीं है, लेकिन घर की नेमत के ऊपर अगर शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला इस नेमत को जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो कमी बेशी अगर होगी हमारे पास, वो कमी बेशी जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला के वादों के ऊपर हमें एतमाद करना चाहिए, और उसके मुताबिक जो है वो अपने अमल को बनाना चाहिए। एक औलाद गलत भी हो तो उसे समझाते नहीं हैं, इस वजह से बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या करना चाहिए? बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, अब देखें माशाल्लाह, वालदैन अगर इम्पार्शियलिटी करते हैं एक औलाद के साथ, एक औलाद गलत हो तो उसको समझाते नहीं है। देखें, फिर वही बात है कि इस किस्म के इश्यूज जो होते हैं वो कहीं किसी शक्ल में कहीं किसी शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो जी मसलों को हल करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, ठीक है, अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करना, मदद मांगना, इस चीज को हम भूले नहीं, ये सबसे अहम चीज है दुआ करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत भी दी है उसके ऊपर शुक्र भी करें, और तीसरी चीज जो है ना वो करने की ये है कि भाई जो इस किस्म के इश्यूज होते हैं ना, तो इन इश्यूज से डील करने के लिए हमें तालीम और तरबियत की जरूरत होती है। ठीक है, तालीम और तरबियत की जरूरत होती है। जब हमें तालीम, सही तालीम है ना, वो साइंस साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली तालीम की जरूरत नहीं होती झगड़े खत्म करने के लिए, फिजिक्स पढ़ के झगड़े खत्म नहीं होते, ठीक है ना, बायोलॉजी पढ़ के झगड़े खत्म नहीं होते घरों वाले या बहनों भाइयों वाले झगड़े खत्म नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला की दीन की जो तालीम है ना, और जो दीन की तरबियत है, नबी अलैहिस्सलाम की समझाई हुई सिखाई हुई तरबियत, इस तालीम और तरबियत को जब इंसान हासिल करता है ना, तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर सुकून और इत्मीनान आ जाता है, और उसके मामलात जो हैं वो अल्लाह के साथ भी अच्छे हो जाते हैं और बंदों के साथ भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बहन भाइयों के दरमियान झगड़े वगैरह हो रहे हैं क्योंकि वाले साहब ने किसी के साथ इम्पार्शियलिटी कर दी, उसकी वजह ये होती है कि तालीम और तरबियत की कमी होती है। ठीक है, तो इस तालीम और तरबियत की कमी को जो है वो पूरा करें, खत्म करें इस कमी को। ठीक है, इल्म हासिल करें और तरबियत जो है वो हासिल करें, तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे की गलत एटीट्यूड की वजह से आपके दरमियान झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, बच्चे अगर बात नहीं मान रहे हों, पढ़ाई भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ कहने से बात नहीं मान रहे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सिर्फ कहने से बात नहीं मान रहे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यानी बच्चे जो है माँ बाप की जब बात नहीं मान रहे हो। देखें, सच्ची बात तो यही है कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना, ये हमारे गुलाम नहीं होते, ये हमारे स्लेव्स नहीं होते। ठीक है, और ना ये हमारी प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, आपकी मिल्कियत होती है, तो उस मिल्कियत के साथ आप जो चाहें करें, उसको इधर रखें, उसको उठा करके कहीं और रख दें, घर के अंदर एक माशाल्लाह आपने पर्दा खरीद करके लेकर आए ना पैसे से, तो वो पर्दा आपकी प्रॉपर्टी हो गया। अब आप चाहें तो उस पर्दे को ड्राइंग रूम में लगाएं, आप चाहें तो उसको लाउंज में लगाएं, आप चाहें तो उसको लिविंग रूम में लगाएं, जहां भी लगाएं, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपकी मर्जी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलती है। उसी तरीके से एक चीज होती है गुलाम, वो होते तो इंसान है लेकिन वो आपकी स्लेवरी में होते हैं। अब तो खैर वो गुलाम नहीं होते लेकिन पहले तो होते थे ना। ठीक है, अब वो गुलाम जो है ना वो आपका, यानी उसको माननी है आपकी बात। अगर नहीं मानेगा तो फिर आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको कुछ और किस्म का आप जो है वो, यानी तादीबी काम कर सकते हैं उसके साथ के, वो यानी गुलाम का काम मानना है और यानी बड़ा जरूरी है उसके लिए मानना। लेकिन जो औलाद होती है ना, ये औलाद जो होती है ना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीज होती है, ना ये प्रॉपर्टी होती है ना ये गुलाम होती है। ठीक है, ये जो है वो आपके दिल के भी करीब है। ठीक है, तो इसका जो है ना वो एक आपके दिल के अंदर भी इसका बड़ा मुकाम है। ठीक है, और साथ साथ जो है ना वो आपको इन इनसे काम भी करवाना है, जो इनके लिए जरूरी है, जो इनके लिए नुकसानदेह है, उनसे आपने उनको दूर भी करना है, और फायदेमंद चीज के जो है वो करीब भी लेकर के आना है। ठीक है ना, यानी आपसे इनसे आपको ये भी जरूरत है कि ये इनकी, ये आपकी अताअत करें। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ना कि ना तो ये आपके गुलाम है ना ये आपकी प्रॉपर्टी है, और अताअत भी करवानी है इनसे ताकि ये फायदा हासिल कर सकें और नुकसान से बच सकें, लेकिन साथ साथ जो है ये लाडले भी हैं आपके। राइट, गुलाम जो होता है वो लाडला तो नहीं होता, और घर की जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी लाडली तो नहीं होती ना, औलाद तो लाडली भी होती है ना, यानी दिल के भी करीब होती है। तो इस वजह से जो है ना ये औलाद के साथ मामला जो है ना, ये बड़ा यूनिक किस्म का मामला है, बड़ा डिफरेंट मामला है ये। ठीक है, तो अब ये है क्या असल में? देखें, इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह के गुलाम हैं। ठीक है ना, और ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और अल्लाह ताला ने मुझे जो ये दिए हैं ना, ये एक नेमत के तौर पर मुझे दिया है। ठीक है ना, और इस नेमत के ऊपर अल्लाह ताला मुझे आजमाना चाहते हैं कि मैं इस नेमत को कैसे हैंडल करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ना जब औलाद नाफरमानी कर रहे हो ना माँ बाप की, तो उस वक्त ये सोचना चाहिए कि भाई ये कोई मेरे गुलाम, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये मेरी बात माने तो क्यों माने, यू नो व्हाई शुड दे ओबे मी। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि भाई ये अल्लाह के बंदे हैं, मुझे जो है ना यकीनन अल्लाह ताला को राजी करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला की मैंने कोई नाफरमानी करी है कि जिसकी वजह से औलाद जो है ना वो मेरी फरमानबरदारी नहीं कर रही है। सबसे पहले जो है वो इंसान अल्लाह ताला से माफी मांगे कि जब औलाद को देख रहा है ना कि वो मेरी बात ही मान रहे हैं, फौरन अल्लाह ताला से उसी वक्त खड़े खड़े इमीडिएटली अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो राजो न्याज शुरू कर दें, बातचीत शुरू कर दें, अल्लाह यकीनन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी होगी, या कोई बात तो एक आध होती है ना, नेक लोग जो है वो कोई एक दो बात नहीं मानी, हम लोग तो यानी लेफ्ट एंड राइट अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त अल्लाह ताला से माफी मांगना शुरू कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। है ना। यकीनन ये मेरे अपने गुनाहों की वजह है, मेरे अपनी नाफरमानी की सजा है कि मेरी औलाद मेरी बात नहीं मान रही, मैं भी तो आपकी बात नहीं मान रही, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना वो तदाबीर के ऊपर लग जाए, तदबीर, ठीक है ना। जब अल्लाह ताला से राज नियाज हो गया ना, और वो बहुत इमीडिएटली हो जाता है, उसके लिए आपको कोई मुसल्ला बिछाना, वुजू करना, हज करना, उमरा करने की जरूरत नहीं होती। जब अल्लाह ताला से इमीडिएटली आपने ये माफी तलाफी कर ली, उसके बाद तदबीर करें कि भाई क्या मतलब मैं अब असबाब के दर्जे में क्या कर सकती हूँ, कि हो सकता है कि आई एम डिमांडिंग टू मच फ्रॉम देम, है ना, या ये कि मैं ये ख्याल नहीं रख रही कि जी क्या ये जो मैं उनसे काम करने को कह रही हूँ ये वाकई उनके लिए मुफीद है या उनके लिए मुफीद नहीं है, क्या ये मैं वक्त के हिसाब से उनको कह रही हूँ या मैं जो हूँ वो इस बात का ख्याल नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर हम इस क्लास के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है ना अपने औलाद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, अनरियलिस्टिक, ठीक है ना, कि जैसे कि उनसे जो है ना वो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उन्होंने जो है वो हमेशा हमेशा कहते हैं ना फर्स्ट आना है, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट उनको फर्स्ट बोलना भी नहीं आता उनको, लेकिन उनको अपने औलादों से जो हमेशा फर्स्ट ग्रेड चाहिए होता है ना, बेहतरीन उनकी जो है वो सोशल रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, बेहतरीन उनके जो है वो ग्रेड्स भी होनी चाहिए, बेहतरीन उनकी जो है फिजिकल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, और घर के अंदर भी जो है ना उनको जो है वो हमारे हाथ बढ़ाने चाहिए। भाई दे आर ह्यूमंस ना, राइट, एंड दे ऑल्सो हैव 24 आवर्स इन देयर लाइव्स इन देयर डे, और उनके पास भी जो है ना वो लिमिटेड जी डिस्कनेक्ट हो गया था, माफ कीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, जो पुराने मैसेजेस थे वो हैं जी, ठीक है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उनसे जो एक्सपेक्टेशंस या हम उनसे जो 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 उनको कमांड्स दे रहे हैं, तो हम कोई अनरियलिस्टिक किस्म की या ऐसी तो नहीं दे रहे कि भाई बस हमें बस अपनी बात की परवाह है और उनकी परवाह नहीं है कि वो उनके लिए मुफीद है नहीं मुफीद है। ये बहुत थॉट प्रोसेस की भी जरूरत होती है कि अपनी औलाद को आप कैसे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। बस ये नहीं होता, यानी वो हमारे जर खरीद गुलाम नहीं है कि हम जो कहें उनको जो है वैसे ही बस हुक्म बजा लाना चाहिए, ठीक है ना। ये मिलिट्री रूल वाला मामला नहीं होना चाहिए घर के अंदर। कुछ वालदैन समझते हैं कि उनका घर जो है ना वो मिलिट्री अकेडमी है, जिस तरह से कि ऊपर को जो यानी हवालदार साहब जो हैं वो कैडेट्स को जो है जिस तरह से हुक्म दे करके घंटों जो है वो खड़ा रख सकते हैं, और जो है वो पानी के अंदर जो है वो उनको खड़ा रख सकते हैं और धूप में खड़ा रख सकते हैं और ये करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं, उसी तरीके से घर में भी मामला होना चाहिए। इधर से हुक्म आए उधर से जो है ना वो पूरा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, ये घर का निजाम ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना। हम चीजों को भाई औलाद को पहले कुछ ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है, कुछ जहन साजी की भी जरूरत पड़ती है, फिर कहीं जाकर के आप उनसे एक्सपेक्ट करें। आप जहन साजी उनकी बिल्कुल किसी दूसरे मामले के में करते हैं, और फिर उनसे जो है वो हुक्म जो है वो किसी बिल्कुल जो है वो दूसरे किस्म का लें, है ना। जैसे जहन साजी आप उनकी करें दुनिया की मोहब्बत की, राइट, मौलवी साहब की क्लास है तो फिर ये बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी। जहन साजी हम औलाद की करें जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई हो, और फिर जो है ना जब उम्रे पर जाएं तो वहां पे एकदम से उनसे एक्सपेक्टेशन ये हो जाए कि जी इनको तो जो है ना वो रो रो करके दुआएं मांगनी चाहिए, इनको तो जो है ना वो 3 तवाफ एक साथ करने चाहिए, और इनको जो है ना वो मुताफ के अंदर बैठ करके खूब सारी नमाजें पढ़नी चाहिए और कसरत से तिलावत करनी चाहिए। भाई आपने इसके लिए अपने औलाद को तैयार किया था, उनकी जहन बनाई थी, उनका जहन बनाया था इस तरीके का, इबादत से उनका कोई ताल्लुक आपने बनाया था, वो तो आपने कभी बनाया नहीं है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि बस वो हरम के अंदर जा करके ना एकदम से जो है वो स्विच हो जाए और वो अपना कोई बटन ऑन कर ले, इबादत वाला बटन ऑन कर ले एकदम से, है ना, और वो धना धन इबादतें करना शुरू कर दे, जबकि हरम के बाहर जो है ना वो आपने सारी जिंदगी उसकी जहन ऐसी बनाया है कि बेटा तुमने तो पढ़ना है, तुमने तो सोशलाइज करना है, तुमने तो जो है वो ये करना है, तुमने तो वो करना है, टीवी भी देखनी है और खेलकूद भी इस किस्म के फजूल किस्म के करने हैं, तो ये बेवकूफी और जहालत है खाली। तो हम जो है ना वो अक्सर औलादों को जो कमांड्स दे रहे होते हैं ना वो हम इसी नौयत की कमांड्स दे रहे होते हैं, हमने उनको ट्रेन किसी और काम के लिए किया होता है और फिर हम उससे एक्सपेक्टेशंस किसी और काम के ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की इनकंसिस्टेंसीज जो है ना इनको हमें समझने की और दूर करने की जरूरत है। खाली ये नहीं कि मैं कहती हूँ वो सुनती क्यों नहीं है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। अच्छा और भी बहुत सारे मैसेज आए, मैंने क्लास का टाइम भी बस थोड़ा सा ही रह गया, तो चलें उससे कोई मसला नहीं हमारे यहाँ तो। क्या और क्या हुआ, किसी ने क्या कहा, अगर सास ज्यादती करे कर रही हो तो उनसे उनके बारे में क्या हुक्म है, वो भी वालदा वालदा के दर्जे में आती हैं। सास ज्यादती करी हो तो वो भी एक वालदा के दर्जे में आती हैं, ठीक है। और ये बात जो है वो मिसाली सास के जो टॉपिक है उसके अंदर बात कर ली जाए, अगर परसों इंशाल्लाह उसकी क्लास होगी। लेकिन हाँ, उनके साथ भी जो है वो एहसान का मामला ही करना चाहिए, बदतमीजी तो उनके साथ भी नहीं करनी चाहिए ना। आपकी अगर अम्मा नहीं है तो कम से कम और भी तो अम्मा है ना, ठीक है ना। आपकी अम्मा आपके साथ ज्यादती करी होती है तो फिर जाहिर है फिर भाई है तो अम्मा जैसी भी हैं, तो भाई शौहर भी तो फिर शौहर होता है ना, उसकी भी तो अम्मा होती है, उनकी तो सगी है। एनीवे जिस तरह अपने माँ बाप जब ज्यादती करते हैं तो उनके साथ आप जो है वो जी 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 और खामोशी और अदब और बस, उसी तरह से सास के साथ भी, ठीक है। एनीवे मुझे एक बात समझ आया है कि झगड़ा खत्म करने के लिए अपने हक मांगना छोड़ दें तब झगड़ा खत्म हो जाए। आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ गई है, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक अपना हक नहीं छोड़ेंगे ना तब तक झगड़े खत्म नहीं होंगे, और जब हक छोड़ देंगे तो उसके बाद झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। हजरत वालदैन ऐसी हरकत करते हैं कि हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन दामाद नहीं बर्दाश्त करते हैं। और रابطہ खत्म करवा दें तो हम उस पर अमल करें तो हमारी कोई पकड़ तो नहीं, ये वालदैन की नाफरमानी तो नहीं। हजरत उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, दामाद के साथ उन्होंने ज्यादती करी, दामाद ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने रابطہ खत्म करवा दिया, ठीक है। तो वालदैन से रابطہ 100% तो खत्म वो नहीं करवा सकते, ठीक है ना। 100% तो खत्म नहीं करवा सकते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि वालदैन के साथ जो है वो आपने रابطہ रखना है, अगरचे के बीवी के ऊपर जो पहला हक होता है वो शोहर का होता है, फिर उसके बाद वालदैन का हक होता है, लेकिन अल्लाह का हक शोहर के हक से ज्यादा बड़ा होता है कि नहीं होता, क्या ख्याल है आपका? शोहर का हक ज्यादा बड़ा होता है कि अल्लाह का हक ज्यादा बड़ा होता है? शोहर का तो नहीं होता ना, अल्लाह का होता है, तो अल्लाह का हुक्म शोहर के हुक्म के ऊपर गालिब आएगा, ठीक है। और वालदैन के साथ आप 100% रابطہ खत्म नहीं कर सकती शोहर के कहने के ऊपर, जिस तरह पर्दा नहीं छोड़ सकती ना शोहर के कहने के ऊपर, उसी तरह वालदैन से कता ताल्लुक भी शोहर के कहने पर नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह शोहर साहब जब पर्दे के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर जो है वो अकलमंदी के साथ पर्दा करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे कैसे करना है, क्या तफसील होनी चाहिए। उसी तरीके से जब शोहर साहब वालदैन के ताल्लुक के साथ इस किस्म का मामला करें तो फिर अकलमंदी के साथ जो है ना वालदैन के साथ ताल्लुक जो है वो ऐसे रखें कि शोहर जो है ना वो उनको पता ना लगे, या तो ठीक है, ठीक है उनको पता ना लगे, ठीक है, उस तरीके से वालदैन से ताल्लुक रखें, या ये कि शोहर साहब को फिर मनाने की कोशिश करें ताकि वो अपनी रेजिस्टेंस जो है वो खत्म कर दें, और वालदैन से जो है वो बहुत ही मिनिमम ताल्लुक जितना के होता है कि भाई जिससे कि पता ताल्लुक ही नहीं होती, उस तरीके से ताल्लुक रखें। बेशक किसी के थ्रू अगर मैसेजेस भिजवाने हैं और उनके मैसेजेस रिसीव करने हैं तो किसी के वास्ते से ये काम कर लें। बात असल में ये है कि दीनदार लोग जो है ना वो उल्टा समझते हैं दीन को, तो वो जब उनको कह दिया जाता है ना कि वालदैन वो शोहर का हक सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, तो अब वो उनको ये समझ में बात बात नहीं आती कि शोहर का हक बेशक ज्यादा है लेकिन अल्लाह का हक शोहर से ज्यादा है। हम अजीब, हम दीनदार हैं, मतलब हम बड़े अजीब किस्म के दीनदार हैं। हम हमारे अपने दीनदारी के अंदर जो है ना वो हमें सारा दीन याद रहता है सिवाय अल्लाह के, है ना, अजीब मामला है हमारा। हमें दीन के अंदर अल्लाह के सिवा सब कुछ याद रहता है, ये नहीं याद रहता है कि शौहर का हुक्म जो है वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहा है, ठीक है ना। हमें ये याद रहता है कि शौहर का हक ज्यादा था, वालदैन का हक कम था, इस वजह से शौहर के कहने के ऊपर वालदैन से ताल्लुक तोड़ लिया, अल्लाह किधर गया, ठीक है ना। तो भाई असल दीन तो अल्लाह के साथ है, शौहर के साथ दीन नहीं है, वालदैन के साथ दीन नहीं है, और बाकी लोगों के साथ दीन नहीं है, असल दीन तो अल्लाह के साथ है भाई। अल्लाह को क्यों आपने पिक्चर से निकाल दिया, ठीक है ना। तो एक तो ये तभी याद रखा करें, हर चीज में अफजल जो है वो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, आला अल्लाह का हुक्म है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज ये याद रखा करें कि दीन के ऊपर अमल करने के लिए आपको इल्म की जरूरत है, जहालत के साथ दीन के अहकाम के ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। एक तो होता है ना अहकामात हैं क्या, इनका इल्म हासिल करना, ये तो चले कुछ दीनदार समझ जाते हैं कि अहकामात क्या हैं, हमें इनका इल्म हासिल करना है, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई अहकामात के ऊपर अमल कैसे करना है, इसका क्या आपको वही नाजिल होगी आपके ऊपर, अमल कैसे करना है इसका इल्म क्यों नहीं हासिल करते, ठीक ठीक है ना, यहाँ पे आकर के हम कहते हैं नहीं नहीं बस बस अहकामात का इनमें हासिल हो गया, बस काफी है, अब मैं खुद करूंगी जैसे भी करूंगी, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के इस दुनिया में सिर्फ अहकामात का इल्म नहीं दिया, बल्कि अहकामात पर कैसे अमल करना है, तरीका क्या होगा हुक्म पे अमल करने का। अल्लाह का हुक्म है ना अकीम सलात, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ ये हुक्म हम तक पहुंचा दिया कि आप ही नमाज कायम करो? क्या ये नहीं सिखाया कि कैसे कायम करो? क्या नमाज की तफसीलात करके नहीं दिखाई या जुबानी जो है नहीं बताई? तो भाई जिस तरह नमाज का हुक्म आने के बाद बस हुक्म आगे पास ऑन नहीं कर दिया, तरीका भी सिखाया, उसी तरीके से हर चीज के ऊपर ऐसे ही है, हर चीज का ये मामला है, तरीका भी सीखना पड़ता है भाई। और ये मामलात के अंदर तो नमाज से ज्यादा तफसील है इसके अंदर कि कैसे मामलात को जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लेके चलना है। वालिद है जब भी, तो ये मिसाली सास और मिसाली बीवी और मिसाली शोहर और मिसाली, ये क्यों सारे के सारे लेक्चर्स होते हैं? तरीका सिखाने के लिए होते हैं। ठीक है जी, वालिदैन की इम्पार्शियलिटी की क्या वजूहत होती हैं? बेवकूफ़ी होती है और जहालत होती है, इस वजह से वो इम्पार्शियलिटी करते हैं। अगर उनको समझ में आ जाए बात ना कि ये इम्पार्शियलिटी उनके लिए बुरी है, तो वो ये बात ना करें। तो इल्म की कमी जो होती है ना, फिर उन जिस तरह हमसे गलत काम करवाती है इल्म की कमी, उसी तरीके से वालिदैन से भी गलत काम होते हैं जब वो इल्म की कमी होती है उनके पास। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि अपने अपने औलादों के दरमियान जो है ना तुम ये तफरीक ना करो, तो उनको इल्म नहीं है इस बात का कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, या ये कि अगर इल्म है भी तो उनको ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की बात ना मानने से क्या नुकसान होता है। ये भी तो एक इल्म की बात है ना कि क्या नुकसान होता है, उनको ये वाला इल्म नहीं है। अगर नुकसान का इल्म हो जाए कि मुझे इसके बाद जो है ना वो ये सजा मिलेगी और ये मेरे साथ बुराई होगी, तब इंसान बच जाता है ना चीजों से। ठीक है, अब आप वालदैन के हाथ धो के पीछे पड़ गए, आप दो दो खवातीन जो है, ठीक है, रहने दें बस, ठीक है यार, माफ कर दें उनको, अल्लाह के साथ अल्लाह अजर की उम्मीद रखें। ठीक है ना, वालदैन की यानी अपनी भी कुछ होंगी, ये नहीं कि बस वालदैन ने सब बुरा किया, मैंने तो कोई बुरा नहीं किया, मैं तो सब काम ठीक करती हूँ। ठीक है, तो अपने भी गले गरेबान में जरा झांक के देखना चाहिए, बहुत होगी वालदैन की बातें। ठीक है, आगे चलें, जैसे हज पर चले जाना नाबालिग औलाद को किसी और के हवाले करके। जी हाँ, इस किस्म की हरकतें करते हैं, हज करना है नाबालिग औलाद की क्या करवा, तो थोड़ा सा और पढ़ लें या क्लास का टाइम खत्म हो गया, लोग थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। तो फरमाते हैं कि वालिदैन की हकतरफी की सजा आखिरत से पहले दुनिया में भी मिलती है। बरहकीन शेब ईमान में बरवायत अबी बकरा नकल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और सब गुनाहों की सजा तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं कयामत तक मौखर कर देते हैं, बजुज वालिदैन की हक तलफी और नाफरमानी के इसकी सजा आखिरत से पहले दुनिया में भी दी जाती है। ये सब रिवायात तफसीर मजहरी से नकल की गई है। ठीक है, ये इंशाल्लाह सबको बात समझ में आती होगी और सुना होगा, यकीनन ये बात सबने सुनी हुई होगी कि वालदैन की हकतलफी के ऊपर सजा दुनिया में ही मिल जाती है, जुल्म की सजा भी दुनिया में मिलती है। ठीक है, और वालदैन के साथ नाफरमानी की जो हकतलफी की सजा होती है, ये भी दुनिया में मिलती है। और कैसे मिलती है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कैसे सजा मिलेगी, ये अल्लाह ताला के खजानों और अल्लाह ताला के तरीके के ऊपर है। अल्लाह ताला हमारी औलाद के जरिए से हमें सजा दिलवा सकते हैं या किसी और जरिए से भी दिलवा सकते हैं, ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये आखिरी चीज पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बड़ा अहम तरीन उसूल है आजकल के जमाने में, सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है कि वालिदैन की अताअत किन चीजों में वाजिब है और कहाँ मुखालफत की गुंजाइश है। तो इस पर उलमा व फुकहा का इत्तेफाक है कि वालिदैन की अताअत सिर्फ जायज कामों में वाजिब है, नाजायज या गुनाह के काम में अताअत वाजिब तो क्या जायज भी नहीं, यानी अताअत वाजिब तो क्या जायज भी नहीं। ठीक है, नाजायज काम, ठीक है, या गुनाह के काम में, नाजायज या गुनाह का काम कोई अलग अलग नहीं होता, मकसद ये है कि जो सराहतन जो हराम काम कुरान और हदीस से साबित हैं उनका हुक्म अगर क्या कहते हैं वालदैन देंगे तो उनका हुक्म हरगिज नहीं माना जा सकता, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ठीक है, यानी खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की अताअत जायज नहीं है। ठीक है, तो अगर हराम का हुक्म दें कि भाई शराब पियो या नाजायज किसी लड़की के साथ जो है ना वो तुम नाजायज ताल्लुक बना लो, या जो है वो सूद का कारोबार कर लो, या कोई और इस किस्म का काम, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ मा, बाप ना ना माँ की अदात की जा सकती है, ना बाप की अदात की जा सकती है। अच्छा, ये तो हो गया हराम, ठीक है। अच्छा, हराम का के लिए ही जो है वो गुनाह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि अगर हराम करोगे तो गुनाह मिलेगा, ठीक है। अब आपसे एक सवाल करके आज इस क्लास को खत्म करना चाहता है, वो ये है कि ये नाजायज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, नाजायज और गुनाह में फर्क क्या है, या नाजायज और हराम में क्या फर्क है, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं, या एक ही चीज है बिल्कुल, या मिलती जुलती चीजें हैं, एक नहीं है लेकिन मिलती जुलती हैं, तो नाजायज का क्या क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया। जी, कोई इसका जवाब अगर दे दे तो हम क्लास खत्म करें। हराम उन कामों को कहते हैं कि जो कुरान और हदीस से साबित है, ठीक है, नाजायज इन कामों को कहते हैं। हराम का मतलब है कि अपनी पूरी लाइफ में वो काम ना किया जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हराम का मतलब यह है कि ना किया जाए, मतलब ये हराम का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि मत करो ये वाला काम, अगर करोगे तो गुनाह तो सजा मिलेगी, तो ऐसे सारे कामों को हराम कहा जाता है। या नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमा दिया कि ये काम मत करो, ठीक है, अगर करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो वो काम हराम हो गया। नाजायज क्या चीज होती है, किसको नाजायज कहा जाता है, उर्फ के अंदर समझ लें, या फिका में भी अगर समझ लें, किस चीज को नाजायज कहा जाता है। नाजायज उन कामों को कहा जाता है, टाइम ज्यादा हो गया है और आप लोग शरीयत के खिलाफ, हराम भी शरीयत के खिलाफ ही कामों को कहा जाता है। नाजायज किन कामों को कहा जाता है, उलमा ने जिससे मना फरमा दिया, इखलाकी मेयार से गिरी हुई चीज को, नहीं जिसको करने से गुनाह मिलता है, नहीं वो तो हराम में आ गया ना। अलग अलग है नाजायज, हुस्न मुआशरत के मुताबिक देखा जाएगा, कौन देखेगा, आप देखेंगे, आप बताएंगे क्या चुना जाएगा, देखा जाएगा, है ना, बड़ा वो फिकी किस्म का जवाब देना ज्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह के अहकाम में वालदैन के बारे में उनको पुराना करना, बात तो चले अब रहने दें, ठीक है। नाजायज उन उमूर को कहते हैं कि जो कि कुरान और हदीस से सराहतन क्लियरली साबित नहीं है कि वो नाजायज है, ठीक है ना, बल्कि ये वो उमूर होते हैं कि जो कि उलमाए उम्मत, जिनको फकीह भी कहा जाता है, मुज्तहिद भी कहा जाता है, फकीह भी कह सकते हैं उनको, आप उलमाए कराम भी कह सकते हैं, मुफ्ती भी उनको कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जो के किसी चीज को कहें कि नहीं ये भी जो है ना ये इसकी इजाजत नहीं है, अगर करोगे तो ये जो है ना, अगरचे कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र नहीं है, अगरचे के हदीस मुबारका के अंदर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हम फतवा देते हैं कि ये चीज नाजायज, यानी इसकी इजाजत नहीं है करने की, वो उसको हराम नहीं कहते, वो कह नहीं सकते हराम ना, क्योंकि कुरान मजीद में और हदीस मुबारका में है ही नहीं उसका जिक्र, तो वो हराम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके लिए, हराम का लफ्ज स्पेसिफिक हो गया कुरान मजीद और हदीस मुबारका से। अब जो है ना भाई, 20वीं सदी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनसे इंसान को शदीद नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, हदीस मुबारका के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उलमा उसके बारे में फतवा देते हैं कि ये नाजायज है, ठीक है। तो ऐसे भी काम जो है ना, जो कि जिनके बारे में उलमा ने फतवा दे दिया है कि वो नाजायज है, उन मामलात में भी वालिदैन की अतात नहीं की जा सकती, वालिदैन की अतात नहीं की जा सकती, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी ये नहीं है कि जी अम्मी कह रही हैं तो कुरान में तो इसके खिलाफ कुछ नहीं है, हदीस में तो इसके खिलाफ कुछ नहीं है, तो अम्मी तो जो है ना वो तो उनकी अतात जो है वो मेरे ऊपर लाजिम है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ,
अच्छा, मुफ्ती साहब ने मना किया था? नहीं, मुफ्ती साहब अम्मी से ज्यादा बड़े कोई थोड़ी हैं। अम्मी का हक मेरे ऊपर ज्यादा है, मुफ्ती साहब का हक कोई थोड़ी है मेरे ऊपर ज्यादा, तो मैं तो वो करूंगी क्योंकि अम्मी का हक मेरे ऊपर ज्यादा है, अब्बा का हक मेरे ऊपर ज्यादा है। मुफ्ती साहब जो है वो अम्मा अब्बा के बराबर में कोई थोड़ी हो सकता है। नहीं, मुफ्ती साहब का जो फतवा होता है ना, वो चीजों को नाजायज कर देता है, और नाजायज मामलात में भी वालिदैन की अताअत नहीं की जा सकती है। जैसे कि कुरान मजीद में कहीं टीवी का जिक्र है, हदीस मुबारका में कहीं टीवी का जिक्र है, तो टीवी जो है वो नाजायज है, ये तो भी मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, क्योंकि कुरान मजीद और हदीस मुबारका में तो टीवी का जिक्र ही नहीं है, ड्रामे का जिक्र है, सीरियल का जिक्र है टीवी के मतलब कुरान हदीस के अंदर। तो उसका मतलब ये है कि अम्मा कहें कि चलो मेरे साथ बैठे टीवी देखो, ड्रामा देखो, सीरियल देखो, अब्बा कहें कि नहीं मैं बैठना है, देखना है सबने बैठ करके, तो मुफ्ती साहब कहें कि नहीं 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 देख सकते, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आप कहेंगी कि नहीं अम्मा का हक ज्यादा है, अब्बा का हक ज्यादा है, मुफ्ती साहब इधर से आ गए। नहीं, मुफ्ती साहब ने नाजायज कह दिया, अब उसमें भी अम्मा अब्बा की अदालत नहीं की जा सकती है। ठीक है जी, चले अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियों को कोताहियों को माफ़ फरमाए, और हमारे इन गुनाहों और नाजायज अफ़ाल की वजह से जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है, हमें उसका इदराक अता फरमाते, हमें उसकी समझ अता फरमाते, और अपने गुनाहों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।